सम्राट की जिद। सबके जाने के बाद अरमान ने चारों तरफ यहां वहां नजरें दौड़ाईं और अचानक रहस्यमय ढंग से एक कमरे के अंदर चला गया। अब आगे वहीं दूसरी ओर आस्था रोते हुए जाकर कार में बैठ गई थी। वो खुद ही ड्राइव करते हुए सीधे सिंघानिया मैंशन पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचते ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। आस्था को इस तरह जल्दबाजी में भागते हुए देखकर सभी सदस्य पूरी तरह से दंग रह गए थे। रश्मि और राधिका तुरंत उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक चली आईं और लगातार दरवाज़ा खटखटाने लगीं और जोर जोर से आस्था को पुकारने लगीं। वहीं रौनक, वंशिका और एंजल, जो बच्चों के कुछ कपड़े सहेज रही थीं, वो उनकी आवाज़ें सुनकर दौड़ती हुई तेज कदमों से वहां आ गई। जैसे ही उन्होंने ये सब देखा तो वे भी पूरी तरह सोच में पड़ गई थीं कि आखिर आस्था को क्या हुआ। वहां का माहौल अचानक टेंशन से भर गया था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाकर आस्था को कई बार आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त आस्था का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वो चिल्लाना चाहती थी, चीखना चाहती थी, अपने दर्द को बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन वो बस रोकर ही अपना दर्द बाहर निकाल रही थी। वसुंधरा भी आस्था के लिए काफ़ी परेशान थी। वो भी सबके पीछे पीछे आस्था के कमरे तक आ गई थी, लेकिन आस्था उस समय किसी की भी कोई बात सुनने की हालत में नहीं थी। तभी अविनाश और बाकी सभी वहां आ गए थे और सभी लड़कियों ने भारी मन से उनसे पूछा कि आखिर आस्था को क्या हुआ है, वो इस तरह से क्यों रो रही है। लेकिन किसी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सभी मायूसी से भरे चेहरों के साथ चुपचाप जाकर हॉल में सोफे पर जाकर बैठ गए थे। सभी लड़कियां समझ चुकी थीं कि इस वक्त आस्था शायद अकेले रहना चाहती है और बाकी तो कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। तभी एंजल इस बार थोड़े गुस्से में बोली, अविनाश, जब से हम इंडिया आए हैं तब से लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। हमारी गोरी की आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? हम तो यहाँ कुछ दिनों के लिए उसके साथ हंसी खुशी अच्छा वक्त बिताने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो लगातार भागदौड़ ही लगी हुई है। ठीक से हमें गोरी के साथ कुछ घंटे तक बिताने का मौका नहीं मिल पा रहा। मैं उसकी भाभी हूँ, मुझे भी जानने का हक है आखिर हो क्या रहा है गोरी के साथ। देखो अविनाश, मैं उसे इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मुझे लगता है कि हमें उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेकर जाना चाहिए। एंजल की ये बात सुनते ही सबके सब हैरानी से उसकी ओर एकटक देखने लगे। वहीं अबीर ने तुरंत एंजल की बातों का समर्थन करते हुए कहा, मेरे ख्याल से एंजल भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे भी जब से आस्था ऑस्ट्रेलिया से वापस आई है तब से उसे तकलीफों के अलावा कुछ नहीं मिला है। कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन उसे रेस्ट करने की जरूरत है। अगर इस हालत में वो और कुछ दिन यहाँ रही तो वो पागल ही हो जाएगी। अबीर की बातें सुनकर सबको थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन कहीं ना कहीं सब जानते थे कि अबीर जो कुछ भी कह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आस्था की भलाई के लिए ही कह रहा है, इसलिए किसी ने भी उसकी बातों पर कोई आपत्ति नहीं जताई। तभी दादाजी, जो अंश का ख्याल रख रहे थे, उसे झूले में सुलाकर वहां आ गए। सबको उदास देखकर अचानक से उनके मन में भावनाओं का सैलाब आ गया। उन्होंने परेशान होते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, आस्था बेटी को क्या हुआ है? देखो, जितना प्यार मैं अरमान से करता हूँ उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं आस्था बेटी से करता हूँ। मैं उसे परेशान नहीं देख सकता, आखिर उसकी उदासी का कारण क्या है? कहते हुए दादाजी थोड़े चिढ़ गए थे। उनकी आवाज़ में उनकी बेचैनी साफ समझ में आ रही थी। दादाजी के शब्द खत्म होते ही अबीर ने दांत पीसते हुए अरमान की शिकायत करनी शुरू कर दी। और क्या कारण हो सकता है दादाजी? वही आपका लाडला पोता मिस्टर अरमान सिंघानिया, जो एकदम पागल हो गया है और अब आस्था के सामने पागलों की तरह बर्ताव कर रहा है। अबीर ने इतना कहा ही था कि इतने में उसे आहान की तीखी आवाज़ सुनाई दी। अबीर की बातों में तंज सुनकर आहान का जबड़ा कस गया। वो खुद को रोक नहीं पाया और कुछ उखड़े अंदाज में बोला, अबीर भैया, लगता है आप कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो गए हैं। आपको हमारे भैया के बारे में इस तरह की बातें करने का कोई हक नहीं है। और रही बात भाभी की, तो मैं जानता हूँ कि वो भाई की वजह से परेशान है, लेकिन हम उन्हें संभाल लेंगे। आपको उनके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उसकी आवाज़ में एक चेतावनी की भावना थी। अब जैसे ही आहान के शब्द खत्म हुए, अबीर हल्की सी मुस्कान के साथ उसके पास आया और उसके कंधे को थपथपाकर बोला, मुझे अच्छा लगा कि तुमने अरमान की साइड ली, लेकिन आहान, खुद भी तो सोचो, तुम्हें नहीं लगता कि अगर आस्था यहाँ रही तो बीमार हो जाएगी? अरमान के लिए तो हम सब हैं यहाँ पर, हम सब मिलकर उसे संभाल लेंगे, लेकिन आस्था का क्या? उसे इस वक्त आराम की जरूरत है। तुमने देखा नहीं आज वो किस तरह बदहवासी में रो रही थी? मुझे लगता है कि हमें आस्था को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, उसे थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए। आखिरकार यार, कोई भी हो, इस सिचुएशन में इस तरह से परेशान हो ही जाएगा। अबीर के शब्द आहान के कानों में ऐसे पड़ रहे थे जैसे अबीर कह रहा हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात टालने की। आहान को थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई, लेकिन वो चुप रहा और गुस्से से वहां से चला गया। वहीं रौनक भी फिर उसके पीछे पीछे जाने लगी थी। वहीं दूसरी ओर इस वक्त डाक विला में माहौल कुछ अलग ही तरह का था। वहां एक अजीब सा मंजर बना हुआ था। राजवीर अपनी बनाई हुई बीवी को लेकर हॉल में बैठा हुआ था, अपनी नई बीवी को अपने पास बिठाए हुए था और लगातार उसे यहां वहां छूने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त सम्राट के चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो काफी देर से रॉकी का फोन ट्राई कर रहा था, लेकिन ना तो रॉकी का फोन लग रहा था और ना ही उसका कहीं कुछ पता लग पा रहा था। एकदम से तंग आकर सम्राट गुस्से में खुद से पड़ा, आखिरकार कहां मर गया है ये बेवकूफ। तभी राजवीर एकदम से कुछ याद करते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने उसे धमकाया हो कि अगर उसने उस लड़की को नहीं लाया तो तू उसकी जान ले लेगा? अगर तुमने उसे ऐसा कुछ कहा है तो यकीनन उसने खुद की जान दे दी होगी, या फिर वो ये शहर छोड़कर भाग गया होगा। राजवीर की इस बात पर सम्राट ने नामे सिर हिला दिया, फिर उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, आपको क्या लगता है गुरुजी, उसमें इतनी हिम्मत है कि वो सम्राट ठाकुर को धोखा दे सके? कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? वैसे भी मैंने अपने कुछ आदमी उसे ढूंढने के लिए भिजवाए हैं। मुझे लगता है कि जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, क्योंकि इतनी देर तक वो मुझसे कॉन्टैक्ट किए बिना नहीं रह सकता। इतना कहकर सम्राट फिर से किसी को मैसेज करने में बिजी हो गया। राजवीर के चेहरे पर अचानक कुछ सोचते हुए अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने परेशानी से आंखें उचकाते हुए सम्राट को देखकर पूछा, आखिरकार कौन है वो लड़की जिसके लिए तू इस कदर पागल हुआ जा रहा है? क्या तेरे पास उसकी कोई फोटो वगैरह है? इस पर सम्राट हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, नहीं गुरुजी, मेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं है। अगर फोटो होती तो अब तक मेरी आंखों के सामने होती। उसे मैंने बस एक ही बार देखा था, और जब से उसे देखा है, यकीन मानिए गुरुजी, तब से मैं पागल हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि उसके अलावा अब मैं किसी और लड़की को कभी नहीं देख पाऊंगा। ये बोलते हुए वो बड़े ही गंदे और अश्लील ख्यालों में आस्था के बारे में सोचने लगा था। तभी राजवीर अपनी जगह से उठा, अपनी नई बीवी को भी कमर से थामकर अपने साथ खड़ा कर दिया। वो सम्राट के सामने ही उसकी नई बीवी के गर्दन के बेहद करीब आकर मझोशी से बोला, वैसे औरत का नशा भी एक अलग ही तरह का शौक होता है। देखा तुमने मेरी बीवी को? मेरी बीवी बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बिल्कुल वही, और वैसे मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूँ।
इतना बोलकर उसने अपनी आंखें घुमाई और शातिर नजरों से सम्राट को देखने लगा। इस पर सम्राट की आंखें हल्की सी चमकी, पर उसने कुछ कहा नहीं। फिर सम्राट ने जल्दी से अपने कुछ आदमियों को एक्टिव करके रॉकी के बारे में पता लगाने की कोशिश की, मगर उसका कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तभी वहां अचानक संजना की चुपती आवाज सुनाई दी, बंद करो तुम दोनों अपनी नौटंकी। हाँ, तुम लोग मुझे अरमान के फार्म हाउस से छुड़ाकर तो ले आए हो, लेकिन क्या तुम लोगों ने एक बार भी ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार अरमान को मेरे बारे में कैसे पता चला? इतना सब होने बाद भी तुम लोग इतने शांत कैसे हो सकते हो? संजना खुद को इतना बेबस महसूस कर रही थी कि उसका दिमाग पागलपन की हद तक खराब होने लगा था। संजना की तीखी आवाज सुनकर राजवीर की आंखें सुर्ख लाल हो गई थीं। वो उसे फाड़ खाने वाली नजरों के साथ देख रहा था, जो सोफे पर एक तरफ बैठी हुई थी। वो उसे तुरंत बोल पड़ा, मिस संजना, अभी आप हमसे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। आपको यहाँ सही सलामत पहुँचाना हमारे लिए आसान नहीं था। फिलहाल आप थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। ये कहते हुए राजवीर की गहरी रौबदार आवाज में संजना के लिए हल्की चेतावनी थी। उसकी आंखें इस वक्त संजना पर ही टिकी हुई थीं। राजवीर की आवाज में गुस्से को भांपते हुए संजना थोड़ा घबरा गई, और वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मेरा इराला आपसे ऊंची आवाज में बात करने का नहीं था। मैं तो बस आप लोगों से ये कहना चाहती थी कि हमें अरमान को कम नहीं आंकना चाहिए। पता नहीं कैसे, लेकिन उसे मेरे इरादों बारे में पता चल गया, जिस वजह से उसने मुझे अगवा कर लिया। अपनी बात समझाते हुए वो अटक अटक कर बोल रही थी, लेकिन तभी राजवीर ने संजना के शब्दों को बीच में काट दिया। ऐसा करते हुए उसकी आवाज कुछ ऊंची हो गई थी, तुम जानती हो, अगर अरमान ने तुम्हें पकड़ा नहीं होता तो मुझे लगता कि शायद वाकई में वो मेरा नंबर वन चेला बनने के लायक नहीं है। लेकिन देखो, उसने तुम्हें आसानी से पकड़कर एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो मेरा नंबर वन चेला बनने के लायक है। राजवीर के अनमने से जवाब ने सम्राट को बिना ज्यादा कुछ कहे भी काफी चोट पहुंचाई थी, इस हद तक कि गुस्से में उसके हाथों की मुट्ठी बन गई थी। अरमान का जिक्र आते ही सम्राट का दिमाग घूम गया था। उसने लगभग चीखते हुए कहा, वो नंबर वन नहीं है, मैं उसे नंबर वन से लास्ट नंबर बनाकर रहूंगा। अगर नंबर वन कोई है तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। बस आप एक बार बोल दीजिए कि मेरे जितना चालाक और मेरे जितना वफादार आपका कोई और चेला नहीं है। मैं वादा करता हूँ गुरुजी, ये पूरी दुनिया आपके नाम कर दूंगा। कहते हुए सम्राट की आंखें एकदम से सख्त हो गईं, उसका चेहरा कठोर हो गया और उसके जबड़े कस गए थे। सम्राट के चेहरे पर इरिटेशन भांपते हुए राजवीर जोर जोर से हंस पड़ा, लेकिन फिर वो उसे इस बात पर बहुत ही कैजुअली जवाब देते हुए बोला, माफ करना बेटा, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता, क्योंकि नंबर वन जो है वही रहेगा। राजवीर के कठोर शब्द सुनकर अगले ही पल सम्राट का पारा शाही हो गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की, फिर अपनी दो उंगलियां माथे पर लगाकर हल्का हल्का रब करते हुए बोला, बस एक बार, सिर्फ एक बार आपके उस नंबर वन चेले की कोई कमजोरी मेरे हाथ लग जाए, फिर देखिएगा आपके उस नंबर वन चेले को मैं कैसे बंदर बनाकर अपने आगे पीछे नचाता हूँ। राजवीर को इतना बोलकर सम्राट गुस्से से वहां से चला गया। वही संजना पूरी तरह से ख्यालों में खोई हुई थी, और उसके जहन में एक ही बात चल रही थी, इन दोनों को तो बस अपनी ही पड़ी रहती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अरमान को मेरी सच्चाई के बारे में कैसे पता चला। इन लोगों ने तो फिलहाल मुझे फार्म हाउस से छुड़ा तो लिया है, लेकिन क्या अरमान दोबारा मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा? कहीं उसे फिर से मेरे ठिकाने के बारे में पता चल गया तो, अगर वो यहाँ आ गया तो? उसकी आंखें थोड़ी ठंडी लग रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था अरमान उसे पकड़कर फार्म हाउस में कैद कर लेगा। फार्म हाउस का खतरनाक मंजर उसकी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। कहीं ना कहीं अरमान की आंखों में अपने लिए नफरत वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। काफी सोच विचार करने के बाद संजना ने आखिर एक फैसला लिया था, मैं इन दोनों पागलों के भरोसे नहीं रह सकती, आज नहीं तो कल मुझे अरमान का सामना करना ही होगा। वो मन ही मन ये तय कर चुकी थी, चाहे कुछ भी हो जाए वो आस्था को कभी जीतने नहीं देगी, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो उसे अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा कर रहेंगे, चाहे उसे उसकी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए संजना के दिल में जलन, कसक और गुस्सा एक साथ उमड़ आया था। तभी अचानक सम्राट संजना के पास आया और उसे छेड़ते हुए शरारत भरी आवाज में बोला, मिस संजना सिंह, एक बात तो बताओ, आपको कैसा लगा था जब अरमान ने आपको रंगे हाथों पकड़ा लिया था? आपको कैसी फीलिंग आई थी? क्या आपने कभी सोचा था कि जिस शख्स से आप बेइंतहा प्यार करती हैं, जुनून की हद तक, वही आपकी जान का प्यासा होगा? उस शख्स की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सम्राट की बातों ने आग में घी डालने का काम किया था, जिसे सुनकर संजना गुस्से से जलती हुई आंखों से सम्राट की तरफ देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके गालों पर थप्पड़ मार दिया हो। उसने अपना आपा पूरी तरह से खो दिया था और वो सम्राट पर किसी जंगली बिल्ली की तरह टूट पड़ी थी। अपनी फालतू की बकवास बंद करो, अरमान सिंघानिया मेरी जान क्या लेगा, मैं खुद उसकी जान अपने हाथों से लूंगी, समझे तुम? उसके साथ साथ मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी, तुम मुझे एक नंबर के पागल दिखते हो। कहते हुए उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि जिद और आग थी। अब जैसे ही संजना ने गुस्से में ये कहा, अचानक सम्राट जोर जोर से हंसने लगा।